मधुरं मधुरे भोपि मंगलं भोपि मंगलं मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलं भोपि मंगलं पावनं पावनेभ्योऽपि हर नामे वा केवलम् आब्रह्मा स्थम्परायन्तम् सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरनामेव केवलम् गुरु सापिता छापि समता बांधवो अपि सह शिक्षा एतत् सदा स्मरतम् हर नामे वा केवलम् निश्वासे नहि विश्वासः कादरुधो भविष्यति कीर्तनीया मातो बाल्याद हर नाम एव केवलम् हरि सागावसे तत्र यत्र भागवता जनः गायन्ति भक्तिभावेन हरनामेव केवलम् आहो दुःखं महादुःखम् दुःख दुःखतरं यतः काचर्तं विस्मृतं रत्ना हरनामेव केवलम् प्रियतम प्रियतम करनो प्रियतम प्रियतम वचहाय गियतम गियतम नित्यम हरनामेवा केवलम त्या जगत सर्वम् राजते सकलो परे चिदानन्दमयं शुद्धम् हरनामेव केवलम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गौर हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रभुपदा शिल प्रभुपदा प्रभुपाद प्रभु पाद जय जय प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य आश्रो छात्र छात्र डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद की जय बीवडी पांडाचार्य शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं स्कंद दसवें से और उसका अध्याय नंबर है 33 और अध्याय का शीर्षक है रास नृत्य। और आज हम लोग जो श्लोक नंबर लेंगे वो 11 से 16 तक लेंगे। तो आई थिंक 11 नंबर का हम लोग उच्चारण करेंगे, तो मैं बोलूंगा उसके बाद आप पीछे दोहराइएगा। तत्रैक अंश गतम बाहुं कृष्णस्य पालासर्भम् चन्दनलिप्तम् आग्राय हृष्टरो माचुचुम्बः तत्रैक अंशागतं बाहुं कृष्णस्य पालासर्भम् चन्दानि लिप्तम् आग्राय विस्तारो माचुचुम्बः त्रात्रैक अंशागतं बाहुं कृष्णस्य पालासर्भम् चन्दानि लिप्तम् आग्राय हिष्टरो माचुचुम्बः। तत्रैक अंशागतं बाहुं कृष्णात्युपालासर्भम् चन्दानि लिप्तमाग्राय हिष्टरो माचुचुम्बः। क्लियर? चन्दानि लिप्तमाग्राय हिष्टरो माचुचुम्बः। माताजी तत्रैक अंशागतं बाहुं कृष्णस्य उत्पालासर्भम् चन्दानि लिप्ताग्राय हृष्टरो माचुचुम्बः। शब्दार्थ तत्र वहां एका एक गोपी अंश अपने कंधे पर गतम रखी हुई बाहों को कृष्णस्य कृष्ण की
उत्पल नीले कमल सदृश
सौरभम जिसकी सुगंध चंदन चंदन लेप से आलिप्तम लेप की हुई अग्राया महकती हुई हृष्ट खड़े हुए रोमा शरीर के रोए चुचुंबहा उसने चूम लिया। तात्पर्य सॉरी अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। कृष्ण ने अपनी बाह एक गोपी के कंधे पर रख दी जिसमें से प्रकृति नील कमल की सुगंध के साथ उसमें लेपित चंदन की मिली हुई सुगंध आ रही थी। ज्यों ही गोपी ने उस सुगंध का आस्वादन किया त्यों ही हर्ष से उसे रोमांच हो उठा और उसने उनकी बाहों को चूम लिया। श्लोक नंबर 12। कशाचिनात्य विक्षिप्ता कुंडला त्विषमंडितम गंधम गंधे संधा धात्या परदाता तांबूल चर्वितम। एक गोपी ने कृष्ण के गाल पर अपना गाल रख दिया जो उसके कुंडलों से सुशोभित था और उसके नाचते समय चमचमा रहा था। तब कृष्ण ने बड़ी ही सावधानी से उसे अपना चबाया पान दे दिया। नित्याति गायति काचित कूजा नुपुरा मेखला पार्श्वास्था चुत्या हस्तजम शंताधा संतयो शिवम। एक अन्य नाचती तथा गाती हुई गोपी उसके पांव के नुपुर और कमर की करधनी के घुंघरू बज रहे थे। थक गई अंततः उसने अपने पास ही खड़े भगवान अच्युत के सुखद कर कमल को अपने स्तनों के ऊपर रख लिया। गोप्या लब्ध विचतु कंतम श्रिया एकांता वल्लभम गृहता कंतयास्ता द्रोभ्यम गयंतास्ताम विजहरे। लक्ष्मी जी के विशिष्ट प्रिय भगवान अच्युत को अपने घनिष्ठ प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने अंतः आनंद लूटा। वे उनको अपनी भुजाओं में लपेटते थे और यह उनके यश का गान कर रही थी। कानों के पीछे लगे कमल के फूल गानों को अलंकृत कर रही बालों की लटे तथा पसीने की बूंदे गोपियों के मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनके बाजू बंदों तथा घुंघरियों की रुंझुन से और की संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और उनके जूड़े बिखरे हुए थे। इस तरह गोपियों भगवान के साथ राजनृत्य के स्थल पर नाचने लगी और उनका साथ देते हुए भौरों के झुंड गुनगुनाने लगे। एवं प्रसिफ्यंगा कर्मी भ्रमशा सिंगाद केशन दुमा विलास हसी रे मेरा मेष व्रज सुंदरी भीरा यथर भका स्वपति निंबा बिंद्र महा। इस प्रकार इसमें तात्पर्य भी है। इस श्लोक में ये आखिरी श्लोक है 16 नंबर। इस प्रकार आदि भगवान नारायण लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने व्रज की युक्तियों का आलिंगन करके उन्हें दुलार करके तथा अपनी तिरछी चंचल हंसी से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार करके उनके साथ में आनंद लूटा। वह वैसे ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा था। तात्पर्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है कि केवल भगवान कृष्ण ही परम पूर्ण सत्य हैं और उनकी शक्तियां असीम हैं। ये असीम शक्तियां साकार होकर भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में प्रवृत्त करती हैं। जिस प्रकार उनकी एक परम दिव्य शक्ति की ऐश्वर्यपूर्ण अभिव्यक्त से भगवान की असंख्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, उसी तरह रास नृत्य में कृष्ण अपने को उतने ही गुणे रूपों में प्रकट करते हैं जितनी शक्तियां गोपियों के रूप में हैं। हर वस्तु कृष्ण है किंतु कृष्ण की इच्छा से उनकी आध्यात्मिक शक्ति योग माया गोपियों को प्रकट करती है। जब उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया उनके दिव्य भावों के प्रवर्धन हेतु ऐसी लीलाएं प्रकट करती है तो वह वैसे ही होता है जैसे कि कोई बालक अपनी ही परछाई से खेल रहा हो।
किंतु क्योंकि ये लीलाएं उनकी ही आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रची जाती है, अंततः वह नित्य तथा स्वतः प्रकट होने वाली है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिशा गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णु पदाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि शिगौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी ये जो अध्याय चल रहा है ये इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे स्पीकर इससे अपना पल्लू छुड़ा देते हैं कि हमें इस पे बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये इतना उच्च स्तर का लीला है कि इसके लिए ना कोई बोलने वाला क्वालिफाइड है ना कोई सुनने वाला क्वालिफाइड है आज की डेट में। वैसे ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बोलने के लिए मैटर नहीं है, मगर ये पब्लिकली ये सब चीजें डिस्कस नहीं करी जाती हैं, क्योंकि ये किसी का प्राइवेट अफेयर है। ये इतना प्राइवेट अफेयर है कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके सिवा पूरी दुनिया को मालूम पड़े। इसे माधुर्य लीला यहाँ पे चल रही है, इतना इतना गोपनीय है कि हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं इन्होंने इस पे अपनी कमेंट्री खुल के देने में उन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई है। क्यों? क्योंकि लोग इतने ज्यादा भी क्वालिफाइड नहीं है। अगर आप लोग वृंदावन के धाम में गएंगे जहां पे सनातन गोस्वामी जी की समाधि है, उसी समाधि के पास में एक समाधि और है, उसका नाम है ग्रंथ समाधि। ग्रंथ समाधि अगर आप देखेंगे वहां पर एक ग्रंथ समाधि है, कोने में जाकर लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी। तो वो ग्रंथ समाधि जितने भी हमारे छठ गोस्वामी हैं और भी गोस्वामी हैं उन्होंने भगवान की जो गुह्यम लीला है, उनकी जो रास लीला है, माधुर्य लीला है, उस पे इतना विस्तार से वर्णन किया था और उसको लिपिबद्ध कर दिया। फिर बाद में उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि जो कलयुग के लोग हैं वो इतने अधम हैं कि इन लीलाओं को वो गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे और गलत तरीके से अपने जीवन में उदाहरण करेंगे। तो इतना ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो बेटर है कि इन लोगों के पास ये चीज पहुंचे ही ना। तो इनके पास अभी जो मैटर है एबीसीडी का कि हम आत्मा हम सोल हैं, ये उन्हीं तक सीमित रहने दें, क्योंकि प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलो यस्मिन युगे जना मंड सुमंड मतेयो मंड भाग्यो हे उपाद्रेता। क्योंकि इस कलयुग के जो लोग हैं उनकी आयु, उनकी बुद्धि, उनकी जो इंटेलिजेंस इतनी कम है कि बार बार बताने पर भी उनको एक छोटी सी चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, तो अगर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे जिसके लिए बहुत ही पीएचडी लेवल के ऊपर का भी ग्रंथ है तो कहां से वो समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा ये उनके लिए एक डेंजरस चीज हो जाएगी, तो बेटर है हम लोग इसकी समाधि दे देते हैं। तो उन सब ने अपने उन्हीं सब ग्रंथों को वहां पे लाके इकट्ठा किया और उसकी वहां पे समाधि दे दी। तो देखिए ये जो 16वां जो आज का श्लोक है वो कितना सुंदर बताता है भक्ति सनातन महाराज। हम सब जानते हैं भक्ति सनातन महाराज कितने क्वालिफाइड और कितने बड़े स्कॉलर थे अपने टाइम के और आज भी हैं। उनको बोला जाता था वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं, वो जो बुक एक बार पढ़ लेते थे वो उनके दिमाग में छप जाती थी। ठीक है, इतने इतने शुद्ध भक्त थे और भगवान विष्णु की वो एक तरह से रे थे, उनकी तरंग थे एक तरह से। ठीक है, और कहा जाता है कि जब उन्होंने अपना वाव लिया कि वो राधा कुंड में जाके कुछ समय वहां पे बिताएंगे और अपनी साधना करेंगे, तो देखिए कहा जाता है कि वैकुंठ से बड़ा क्या है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, मथुरापुरी, मथुरापुरी से बड़ा वृंदावन धाम, वृंदावन धाम से बड़ा गोवर्धन, गोवन से बड़ा राधा कुंड। अभी देखिए श्री कृष्ण बलराम की जय। अब वहीं पे भगवान के एक बहुत शुद्ध भक्त शिला भक्ति सिद्धांता महाराज राधा कुंड में बैठ के, तो वहां पे वो हर दिन प्रवचन देते थे, और किस बात पे देते थे प्रवचन, उपदेशा अमृता पे, क्योंकि राधा कुंड इतना कॉन्फिडेंशियल पास टाइम के साथ वहां पर है, इतना इतना गुह्यम वहां पे लीलाए हुए हैं, उसको ना छूते हुए उन्होंने सीधा काखा घा एबीसीडी से शुरू करा, और वो क्या था उपदेश अमृत का पहला, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदार उपस्थ वेगम इतान वेगम यो विषहेत धीरा सर्वम आपिमम पृथ्वीम सशिष्यत। मतलब कि जिस इंसान की जीवा कंट्रोल में नहीं है, जिस इंसान की बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, जिस इंसान का उदर उपस्थ कंट्रोल नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, एंगर कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे इंसान को अगर भगवान का उच्च लीला बता दो तो वो क्या करेगा, वो अपना भी नुकसान करेगा और समाज का भी नुकसान करेगा। तो उन्होंने वही तत्व रखा जो लोगों का लेवल था, और जो वहां के आस पड़ोस के जो बाबा जी ले थे उनको पता था कि भक्ति सिद्धांता महाराज कौन है, कितने बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनको सुनने के लिए वो आते थे, वहां पे भीड़ इकट्ठी होती थी, तो वो एक एक दिन तीन तीन चार चार घंटा बोलते थे एक ही सब्जेक्ट मैटर पे। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो नए लोगों के लिए है, हम तो ऊंचे स्तर के लोग हैं, भक्ति सिद्धांता महाराज हमें ऊंचा स्तर नहीं बता रहे हैं, इस करके हम यहां से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गौड़ वैष्णव वालों को ऊंचा स्तर नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पब्लिकली नहीं बोलते हैं तो हमें ऊंचा स्तर पता ही नहीं है, ये ऊंचे स्तर को बोलने के लिए ऊंचे स्तर के सुनने वाले लोग भी चाहिए, क्योंकि हर किसी को हर चीज नहीं दी जा सकती है, उसके लिए वो पर्सन क्वालिफाइड भी होना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं, ये तो रस नहीं देते हैं, भक्ति का रस नहीं देते हैं, ये ना ये जो गोपी रस नहीं देते हैं, ये सब नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पब्लिकली नहीं बोलते, इसका मतलब हमको नहीं पता है, हम लोग जान के नहीं बोलते हैं, ताकि इसका वैसे ही बहुत मिसयूज हो चुका है, इसका वैसे ही हद से ज्यादा बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हो चुका है, और इसको ज्यादा खराब नहीं करना है, क्योंकि पहले हमारी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए कि दरअसल में हमारी असली पहचान क्या है, तो ही हम आगे यहां पे बढ़ पाएंगे। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण है वो एक लौते ही ऐसे सबके सोर्स हैं, जिसमें ब्रह्मा जी खुद ही बताते हैं ईश्वरा परमहा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण अगर अपने पुरुष फॉर्म में है, पुरुष रूप में है, तो भगवान श्री कृष्ण है। अगर वही भगवान श्री कृष्ण अगर अपने स्त्री फॉर्म में है, स्त्री रूप में है, तो वो श्रीमती राधा रानी है, और वही श्रीमती राधा रानी क्योंकि वो उनकी एनर्जी है, वो उनकी शक्ति है, वो उनकी लादनी शक्ति है, वो उनकी प्लेजर पोटेंसी शक्ति है, ठीक है, और वही शक्ति आगे और गोपियों का विस्तार करती है, अनेकों अनगिनत गोपियों का विस्तार करती है। इसका प्रमाण हमें कहां पे मिलता है, श्री भगवत संहिता में मिलता है, मैं आप लोगों के लिए वो गा देता हूं, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविता बेस ताभी या एवनि जरूप तया कला भी गोलोक एवनि वहस्त अखिलात्मा भूत गोविंदमादि पुरुषम तमाहं भजामि। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर, ये श्री ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अब देखिए उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में इसका अनुवाद लेकर आया हूं, क्या लिखा है अनुवाद, सॉरी हाँ अनुवाद, जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति, यहां श्रीमती राधा रानी को बताया गया है स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त लादनी रूपा श्रीमती राधा रानी तथा उनकी ही शरीर की विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, कौन गोविंद जी, जो कि उनके नित्य आनंद में चिन्मय रस से सुफूर्त एवं पूरित रहती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। देखिए तो अब इसमें जो अनुवाद में क्या लिखा है कि जैसे एक बालक अपनी ही परछाइयों के साथ खेल रहा है तो उसे कोई बोलेगा कि ये कुछ गलत कर रहा है, वो उसकी चीज है, वो कैसे भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार से किसी भी ढंग से उनके साथ वो खेल सकता है। तो ये जितनी भी यहाँ पे गोपियां हैं और श्रीमती राधा रानी और आगे उनके अनेकों विस्तार हैं, वो भगवान की क्या है, अनेकों अनेक उनकी शक्तियां हैं, उनकी एनर्जी है। देखिए भगवान को ना इंग्लिश में बोला जाता है ना कि भगवान इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह सर्वव्यापक है, ओमनीशियंट, उनको हर चीजों के बारे में नॉलेज है, ठीक है, और वो सर्वशक्तिमान भी है। अब अगर शक्तिमान है तो उस शक्तिमान की शक्तियां भी तो होगी कि नहीं होगी, भगवान खुद ही बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, भागवत गीता में, कि मेरी अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं जिनका मुझे भी ज्ञात नहीं है, मेरे को भी नहीं पता मेरी शक्तियां कितनी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की 8 जो मुख्य है जो जो भौतिक शक्तियां हैं, भगवान की आध्यात्मिक भी है, भगवान की भौतिक भी है। जैसे उनको बताया गया योग माया आध्यात्मिक है और महामाया भौतिक है, तो उस भौतिक के अंदर जो 8 है प्रमुख है, जो कि 4-5 स्थूल और 3 सूक्ष्म है, कौन कौन से है, भूमि अपो नलो वायु खम मनोर बुद्धि एवचा अहंकार इदियम में भिन्न प्रकृष्टि अष्टधा, कि हे अर्जुन ये जो मेरी 8 एनर्जी है ये मेरी सेपरेटेड मुझसे अलग है, मगर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इस भौतिक जगत का विस्तार होता है। अभी देखिए ये जो शरीर है ये स्थूल से बना है, स्थूल से बना है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, भूमि पृथ्वी, ठीक है, वायु आकाश जल और अग्नि। देखिए इन 5 चीजों से अकेला ये शरीर नहीं बना है, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु देखिए, ये माइक्रोफोन ये भी उसी से बना है, ये माइक्रोफोन का स्टैंड उसी से बना है, ये पुस्तक ये कैमरे ये लाइटिंग ये पंखा ये धरती आकाश जितना भी अगर आप देखें यहां पे ये सब इन 5 चीजों से बना हुआ है। और जिसमें जान प्राण है उसके अंदर सूक्ष्म चीजें भी आई हुई है, जैसे मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और ये अहंकार, इन सब का 8 चीजों का मेल होके। अभी कोई बोले कि प्रभु जी ये ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे अग्नि है, अग्नि के अंदर तो अग्नि भी तो एक मैटर ही है, ठीक है, मगर उस अग्नि के अंदर भी वो पांचों चीजें मौजूद है, मगर उस अग्नि में अग्नि का जो तत्व है वो सबसे ज्यादा है। अब पानी, पानी के अंदर भी आग है मगर कैसे देखे उसके अंदर, मगर पानी का तत्व ज्यादा है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये शरीर है, उदाहरण के तौर पे ये शरीर है, अभी इस शरीर के अंदर कोई बोले या शरीर के अंदर आग भी है, अब कोई एग्जाम्पल बताए तो कैसे बताएगा आग है, अब बताइए जरा, एक जठर अग्नि के रूप में है और दूसरी एक ज्वार के रूप में है, कि जैसे हम सबको फीवर हो जाता है तो हम सब देखते हैं हमारा शरीर तपने लगता है, तो जो अग्नि है अग्नि का एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हीट ताप लाइट, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया हमारे अंदर ये सब है, भगवान की एनर्जी है। कल ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, शिल प्रभुपाद जी के बारे में उतारे थे, किसी भक्त से बात कर रहे थे, वो बोल रहे जो पेट्रोल है ना वो भी भगवान की एनर्जी है, क्योंकि फैक्ट है, क्योंकि वो भी पंच महाभूतों से ही बना हुआ है, तो बोल रहे जो पेट्रोल है वो भी है, और वो पेट्रोल अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाया जाए तो सर्वोच्च है। जैसे कि आप लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ी में डलता है पेट्रोल, अब पेट्रोल के अंदर अगर आप पेट्रोल गाड़ी में डाल के कृष्ण भावनामृत के लिए प्रचार करेंगे, चाहे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, टेंपल के लिए आ रहे हैं, धाम जा रहे हैं, अपने आप को लेके, घर परिवार को लेके, भक्तों को लेके, तो ये भगवान की सेवा में यूज हुआ है। तो जितने भी हमारे पास भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों में और क्या क्या आता है, हमारा खुद का माइंड, हमारा खुद का इंटेलिजेंस, हमारी खुद की नॉलेज, हमारा खुद का जो हमारे पास अलग अलग तरह का स्किल है, स्किल्स है, वो जितनी भी सब चीजें हैं वो भगवान की सेवा में लगने चाहिए। अभी भागवत गीता का जो 10वां अध्याय है, ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, वहां पे भगवान ने अपना थोड़ा सा हल्का सा उसके बारे में बताया कि देखो अर्जुन, इस भौतिक जगत के कितनी भी जो प्रमुख चीजें है ना, उन सबका स्रोत नहीं है। जैसे कि भगवान बताते हैं कि देवी देवताओं में इंद्र मैं हूं, ठीक है, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, हाथियों में एरावत मैं हूं, घोड़ों में उच्चिश्वरा मैं हूं, ठीक है, नक्षत्रों नाम अहम शशि, जितने भी तारे हैं उनमें से चंद्रमा मैं हूं, सूरज मैं हूं, है नामे विदु सूरगणा महर्षि नुचा अहम आदिर ही देवा नाम, जितने भी देवी गॉड्स हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन सबका स्रोत मैं हूं। इतना कुछ बताने के बाद जो आखिरी के तीन श्लोक थे भगवान वो क्या बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि इतना सुनने से इंसान पागल हो जाता है कि भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं, हे परंतपा, जो कि ये 40वां है 10.40, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का खाली एक संकेत मात्र है। मतलब कि उन्होंने जो 39 श्लोक्स बोले हैं उनके अंदर उन्होंने भौतिक जगत का सब कुछ कवर कर दिया है, और उसके उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो खाली एक छोटा सा एक फ्रेगमेंटल पार्ट है, एक छोटा सा संकेत है, उसको तुम जानो मत, वो खाली एक मेरे लिए तुच्छी मन की चीज, एक कण है मेरे लिए। और आगे क्या बोलते हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुटिंग मात्र के अद्भुत हैं। और आखिरी में क्या बोलते हैं, जो आखिरी श्लोक है, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशित ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। मतलब उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हैं 14 प्लेनेट उन सबको कवर कर डाला, और उसके बाद क्या बोलते हैं, तुच्छ है मेरे लिए, मतलब कि मैं इन सबको चलाता भी नहीं हूं, इनको चलाने के लिए मेरी क्या है, शक्तियां हैं। जैसे कि भगवान बोलते हैं कि देवी है ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो ये देवी है, जो ये प्रकृति है, मेटीरियल नेचर है, ये एक दिव्य है, देवी है गुण माया, ठीक है, ये जितनी भी है ये मेरे लिए क्या करी है, मया अध्यक्षेना सूर्य ते सा चराचरम, मेरे अध्यक्ष मेरी आंख के इशारे में ये सूर्य ये चंद्रमा ये सभी लोग यहाँ पे इतने अच्छे से कार्य करते हैं। जैसे भक्ति सांता महाराज ने आज के जो तात्पर्य में क्या बोला कि भगवान क्या है, परम पुरुषोत्तम है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो परम सत्य है। कहां पर भगवान ने अपने आप को परम सत्य के बारे में बताया गया है भगवद गीता में, कौन बताएगा, नाहम प्रात्रम अन्यत किश्चित अस्थि धनंजया मई इदम सर्व पोत्रम सूत्रे मणिगणाया, हे अर्जुन, मुझसे कोई मुझसे भी ऊपर कोई ट्रूथ है ही नहीं, मैं ही एब्सोल्यूट ट्रूथ हूं यहां पर। अभी जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा कर रहा था रिसर्च, तो मैंने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध ये जो चल रहा है इसका जो 90 अध्याय का कुछ श्लोकों को जब मैंने ध्यानपूर्वक से पढ़ा कि आप छोड़ दीजिए भगवान के आध्यात्मिक जगत में उनकी शक्तियां कितनी है, उनकी भौतिक जगत के अंदर उनकी शक्तियों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। और ये बताया गया है वहां पे उन्होंने कि 40वें नंबर श्लोक में कि भगवान की जो फैमिली थी ना, जो उनके यदु थे, जो बोला जाता था भगवान की 16108 रानियां थी, ठीक है, और उनसे उनको कितने सारे थे पुत्र उत्पन्न, 10 पुत्र और एक पुत्री, ठीक है। आप बताइए, अब उसका कैलकुलेशन कीजिए, उनके बाद उनके बेटों के कितने सारे पुत्र हुए, ठीक है, उनकी बेटियों के कितने सारे पुत्र हुए, और ये बताते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर उन्हीं सबको कैलकुलेशन में लगे ना तो उसे 10,000 साल लग जाएंगे उनकी गिनती करते करते, तो भी पूरा नहीं होगा। सिर्फ अभी उनका घर परिवार के बारे में बता रहा हूं मैं। सुखदेव गोस्वामी ये इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं, परीक्षित महाराज को, कि भगवान का जो बाहरी जो चीज है ना, जो शक्तियां जो हम आंखों से देख ही नहीं सकते, जो बहुत ही ज्यादा सटल है, सूक्ष्म है, उनका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी तो ये देखो भगवान का घर परिवार कितना बड़ा है कि 10,000 साल लग जाएंगे, कोई उनकी गिनती भी नहीं कर सकता, भगवान का इतना बड़ा परिवार है। और उसमें से ये भी बताया कि जो उग्रसेन है, जो महाराज उग्रसेन है, ठीक है, कह रहे ये तो यदु की बात है, जो उग्रसेन, जो महाराज अग्रसेन थे, कहते कि उनके ऑपुलेंट के बारे में क्या बताया गया है, कहते कि उनके अंदर कि उनको सहायता करने के लिए 30 trillion अटेंडेंट्स, 30 trillion, 30 trillion हमारे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है। अब देखिए ये जो भौतिक जगत है इसकी पॉपुलेशन है कितनी, कौन बताएगा, ठीक है, कितनी है? 800 करोड़ के आसपास कह रहे हैं, मतलब कि 8 बिलियन, इंग्लिश में बोला जाएगा 8 बिलियन के हिसाब से है, ठीक है। और जो बिलियन, जो ट्रिलियन है वो बिलियन से भी ऊपर है। तो बताते हैं कि जो 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन का बनता है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो मेरे साथ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस भौतिक जगत के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन की है, ठीक है। और यहां पे जो किंग उग्रसेन है उनकी सेवा में 30 ट्रिलियन उनके लोग लगे हुए हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको महल को देखने के लिए, ठीक है। जो 1 ट्रिलियन है वो 1000 बिलियन का है। तो अब बताओ जो उसके बाद 30 ट्रिलियन है, तो यहां पे कैलकुलेशन लगाया 30 लाख करोड़ ये उनके पास इंप्लॉइज थे महाराज उग्रसेन के पास। और आप जैसे बता रहे हैं कि 800 करोड़ की तो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, अब सोचो कितने लोगों को उन्होंने वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी होगी। लोग बोलते पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। अरे महाराज ऑपुलेंट देखना तो इधर देखो, 30 ट्रिलियन लोग उनके लिए काम करते हैं। और भगवान का क्या कहना आगे, ये तो खाली एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, उसके छोटे से वहां पे इतना काम चल रहा है। और जैसे हम लोग भागवतम में उठा के पढ़ते हैं कि कैंटो 3 के अंदर कि महाविष्णु जी के पोर से, क्योंकि जो जो 3 पुरुष अवतार है वो भी भगवान की एनर्जी ही है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से बाहर निकले बलराम जी से बाहर निकले 4 फर्स्ट चतुर्व्यूह, ठीक है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना और अनिरुद्धा, और उन्हीं संकर्षण से बाहर निकले नारायण जी, उन्हीं नारायण जी से फिर अगले 2nd चतुर्व्यूह निकले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा, और उस 2nd संकर्षण से, ठीक है, निकले महाविष्णु, महाविष्णु से निकले गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से निकले शिरोदक्षाय विष्णु। अब जो महाविष्णु है उनके एक एक छिद्र से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। मतलब देखो भगवान ने खुद भी वहां पे काम करने की जरूरत नहीं, वहां पे लोगों को रखा हुआ है। लोग बोलते ना कि यहां पे आपके जो हिंदू फिलोसफी है जो भी है उसमें 33 करोड़ देवी देवता है, कोई ऐसी फर्म है जिसके पास 33 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हो जो लोगों को काम दे सकता है? 33 करोड़ छोड़ो, यहां महाराज उग्रसेन है वो 30 ट्रिलियन की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। देखो उनका उनका ऑपुलेंट कितना भारी है, उसके आगे भगवान का सोचना भी, अगर भगवान के बारे में सोचे तो और भी हमारा सर चकराएगा। मतलब भगवान की शक्तियां इतनी विस्तार से हैं, इतने विस्तार से हैं, उनका अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब कोई इंसान, और आप भी इतने देर से ये बैठ के इतना कुछ सुन रहे हैं, अभी कोई जो अनजान लोग होते हैं वो इतना ना सुनने के बाद वो ये क्लेम कर बैठते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से जानते हैं। सोच लो अभी उनकी शक्तियों का विस्तार के बारे में नहीं पता, उनकी भगवान क्या बोल रहे कि मेरी जो जितना तूने अर्जुन सुना है ना चैप्टर 10 के अंदर, ये कुछ नहीं है, ये जो कर्ण होता है कर्ण उससे भी छोटा है ये मेरा ऑपुलेंट, तो उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो कितना बड़ा है। और एक जीव है जो कि जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा, एक पास टाइम शिला प्रभुपाद अपने प्रिय शिष्य हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज को एक बार थोड़ा डांट रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा कहीं से कहीं थोड़ा सा आ गया था प्राउड कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं प्रभुपाद जी की आर्मी में, जो कि वाकई वो थे, मगर गुरु है वो थोड़ा भाप लेता है। तो उन्होंने बुलाया अपना महाराज को, तमाल कृष्ण महाराज को अकेले रूम में, और उनको एटलस दिखाया, एटलस, ठीक है, एटलस आजकल तो नहीं मिलता एटलस, आजकल तो सब गूगल हो गया मैप फोन के अंदर, पहले होता था गोल गोल सा एटलस मैप होता था टेबल पे, ग्लोब एटलस ग्लोब होता था। तो उन्होंने बुलाया, बोले तमाल कृष्ण इधर आओ, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहते तो देखो आप भी भागवतम पढ़ते हो और मैं भी पढ़ता हूं, बताओ कि भगवान के कितने अनेकों ब्रह्मांड है ना, कितने हैं? वो कहते कि जैसे समुद्र के किनारे जो रेत है ना, रेत अगर एक एक रेत भी काउंट हो जाए ना तो वो काउंट हो सकती है, मगर जो भगवान का जो ब्रह्मांड है ना वो काउंट नहीं हो सकता। इतना अनलिमिटेड है भगवान का ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मा जी हैं, किसी के 4 सर, किसी के 8 सर, किसी के 12 सर ही है, कहते तुम उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। कहते हाँ प्रभात जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम उसका बिल्कुल भी हिसाब नहीं लगा सकते हैं। कहते हाँ, कहते उन अनगिनत जिसकी कोई गिनती नहीं है, उनमें से एक छोटा सा प्लेनेट है अर्थ, और एक छोटा सा ब्रह्मांड है ये जो हमारा ब्रह्मांड है, और उसमें से छोटा सा प्लेनेट है अर्थ, देख रहे हो। कहते हाँ प्रभा जी, बहुत छोटा सा प्लेनेट है। कह रहे ये देखो, ये वो प्लेनेट है। कहते हाँ है। कहते इस प्लेनेट के अंदर बहुत सारे देश हैं, ठीक है, अनेकों देश हैं, 100 से ऊपर, 150 से ऊपर, ठीक है। हाँ जी प्रभा जी, जो है उनमें से एक देश है छोटा सा, उसे बोलते हैं USA, अमेरिका। कहते हाँ। कहते उस अमेरिका के अंदर अनेकों स्टेट है। कह रहे हैं हाँ जी है, ठीक है। उस स्टेट के अंदर कितनी सारी स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। उन स्ट्रीटों में एक स्ट्रीट है हमारी वाली, और उसमें एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है तमाल कृष्ण, और वो सोचता है वो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है। तो प्रभुपाद जी ने उनको इस तरह से लेसन दिया कि कहीं ना कहीं उन्होंने भाप लिया था। गुरु हैं, गुरु भाप लेते हैं सब चीजें। मगर जब ये महाराज खुद ही अपने बारे में ये स्टोरी बता रहे थे ना, तो बोल रहे थे तब मेरी आंखें खुल गई कि मेरे गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, कि हमें बिल्कुल भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए हम दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, दुनिया के सबसे बड़े इंसान है, कि अगर हम कल को नहीं गए ना ऑफिस में, हमारे ऑफिस का दिवालिया निकल जाएगा, और ये दुनिया नहीं उठेगी। अगर मैं कल सवेरे नहीं उठा जल्दी से, तो दुनिया भी नहीं चलेगी मेरे बगैर। नहीं, ये कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं, ठीक है ना। अभी भागवत, अभी जो जितने भी स्क्रिप्चर्स है प्रभुपाद ने लिखे हैं, साधु संतों ने लिखे हैं, ठीक है, भगवान ने दिए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य यही है, वो क्या है, जीवा को अपने पास लेकर आना। माया मुग्ध जीवेरे नाही सदा कृष्ण ज्ञाना, जीवेरे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराना। कि माया के मुग्ध में आके, देखिए भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं, उनकी माया एनर्जी ही बहुत ज्यादा काफी है हमको हिलाने के लिए, ठीक है ना। कि इतनी ज्यादा माया ने हमें मुक्त कर रखा है, क्योंकि हम ये, और वो क्या है माया मुक्त का सबसे पहला वार क्या है, हम ये शरीर है, आत्मा नहीं है, और इस बेस पे अपना पूरा जीवन जी डालते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है, ठीक है। और इसी भ्रम में जीते जीते हमें यही नहीं पता भगवान श्री कृष्ण कौन है। मगर जीवे रे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराना, जीवों पे कृपा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, अपने भगवत धाम वापस लाने के लिए भगवान ने वेद शास्त्रों को निर्माण किया हुआ है। तो इन्हीं वेद शास्त्रों का हमको अच्छे से अध्ययन करना है, उसे समझना है और अपने जीवन में उतारना है, तभी हम भगवान और भगवान की शक्तियों को अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे तो नामुमकिन है ये समझ पाना, मगर कहीं ना कहीं हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है चैतन्य चरितामृत में कि जो भगवान है वो 4 चीजों से जाने जाते हैं, नाम, रूप, गुण और लीला, इन 4 चीजों से। मगर सर्वप्रथम नाम है। जब हम नाम लेने लगेंगे अच्छे से भगवान का जपा, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये नाम हम अच्छे से लेने लगेंगे शुद्ध नाम है, तब हमें भगवान के रूप के बारे में पता लगेगा, और जब हमें भगवान के रूप के बारे में पता लगेगा, तब हमें भगवान के गुण के बारे में पता लगेगा। जब भगवान के गुण के बारे में पता लगेगा, तो आखिरी में ये लीला आती है भगवान की, जो इतनी गुह्यम लीला थी, तभी हमें उन लीलाओं को समझ में पाएंगे। क्योंकि इन लीलाओं को सुनने का एकमात्र एकमात्र पर्पस यही है भगवान का, इन लीलाओं को करने का, कि जितनी भी जीवात्मा है वो भगवान के प्रति 100% शरणागत हो जाए, भगवान के प्रति 100% शरणागत हो जाए, इसका एक मात्रा है। मगर जो बद्ध जीव है, उन इन लीलाओं को सुनने के बाद वो क्या करता है, वो बोलता है इस फिल्म स्टोरी का हीरो मैं बनना चाहता हूं, वो लीला का हीरो बनने का कोशिश करता है, कि देखो भगवान भी हीरो थे, इतनी सारी हीरोइनें थी, मैं हूं, मेरी कहां हीरोइन। तो वो इन सब भावों में आ जाता है। नहीं, इन सब लीलाओं का एकमात्र पढ़ने का उद्देश्य है भगवान के तरफ पूरी तरह शरणागत रहे हैं। एक माधुरी, ये बहुत ही माधुर्य लीला है। तो पहले नाम अच्छे से, फिर उसके बाद जब भगवान देखेंगे ये बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है, तो अंदर से वो ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो उनके गुण के बारे में पता लगने लग जाएगा। उसके बाद सॉरी उनके रूप के बारे में पता लगने जाएगा, उसके बाद उनके गुण के बारे में पता लगने जाएगा, उसके बाद फिर लीला के बारे में, जो कि सबसे चौथा स्टेज है यहाँ पर। तो हमें वर्कआउट करना है कि हम अपने बेस पे काम करें, जो कि हमारी नींव पे, क्योंकि अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने भक्ति का जितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाइए वो सब लड़खड़ाएगा। क्योंकि आप लोगों के भी अपने अपने घर है, अगर आप लोगों ने घर बनाए होंगे तो देखना सबसे ज्यादा समय नींव पे ही लगता है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वो ऐसे तैयार हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब नींव है वो नींव फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को वो होल्ड करती है। अगर वो भी कमजोर है ना तो वो बिखर जाएगा। तो हमें भक्ति में यही करना है कि अपने आप को कैसा भी मौसम आए, आंधी तूफान आए, भक्ति में बिखरना नहीं है। उसके लिए हमारी नींव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए अच्छे से माला करना है, भागवतम का अच्छे से श्रवण करना है, ठीक है, भगवान का सेवा करना है, भक्तों का संग करना है। अगर आपके पास समय मिले तो आप लोगों को भी प्रचार कीजिए, ठीक है। 5 मिनट बचे हैं, मैं कुछ प्रश्न का लेना चाहूंगा और प्रयास करूंगा कि उनका उत्तर दे सकूं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु। भगवान के प्रतिबिंब के समान है। हाँ जी, देखिए भगवान का जो पहला प्रतिबिंब है उसको उसको ये भी बोला जाता है कि स्वरूप शक्ति। तो भगवान का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भगवान के लेफ्ट हैंड साइड से कौन निकली है, उनकी फर्स्ट स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी से निकले हैं गोपियां। तो इस हिसाब से जो राधा रानी है वो भी भगवान को बिलोंग करती है, गोपियां हैं वो भी भगवान को बिलोंग करती हैं, क्योंकि शक्ति की शक्ति की शक्ति। एते चमसा कल्हा पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो जितने भी इंकार्नेशन के इंकार्नेशन के इंकार्नेशन है वो सब भगवान से, क्योंकि भगवान ही सबके स्त्रोत है, वो सबके ओरिजिन है, सर्व कारण कारणम। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भगवान से संबंधित राधा रानी भी है और उनसे संबंधित गोपियां भी है, क्योंकि वो उनकी नित्य पार्षद है, उनकी शक्तियां हैं अनेक अनेक। जैसे कि वृंदा देवी वृंदावन धाम में उनका एकमात्र उद्देश्य है, और उनके उनके एम्प्लॉयज कौन है वृंदा देवी के, पैरेट, तोते। वो यहां वहां उड़ते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन वृंदा देवी को ला के देते हैं, वो वहां की मैनेजर है। वो जब देखते हैं कि भगवान को इस लीला में ये समय होने वाली है तो वो उसके लिए फैसिलिटीज अरेंज करती है। तो कैसे होता है, भगवान की इच्छा मात्र से, वो भगवान की एक एनर्जी है तुलसी महारानी के रूप में, वृंदा देवी के रूप में। तो वो भगवान के लिए फैसिलिटेट करती है, उनको सेवा प्रदान करती है, उनके लिए चीजें लगा के। और वैसे एक एनर्जी है अनंत रूप के रूप में, अनंत शेष, वो उनकी एक एनर्जी है। बलराम जी उनकी एक एनर्जी है जो उनके लिए सब कुछ तैयार करते हैं उनकी फैसिलिटीज के लिए। तो वैसे जो गोपियां हैं वो भी ऐसे ही तैयार करती हैं भगवान को। ये सब चीजें हैं वो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए कही है, जितनी भी फैसिलिटीज है वो भगवान को आनंद देने के लिए, और अपने भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं तो उनके लिए भी ये लीला करते हैं। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। केशव प्रभु है वो ऑनलाइन के लिए, वो माइक जो कि हमारे ऑनलाइन है ना लिसनर्स, उनको दे दो माइक।
कृष्णा आपने ये बताया कि पहले नाम फिर रूप, लेकिन जब हम किसी रूप को जानते ही नहीं है, जैसे हमने भगवान को देखा नहीं है तो उनका नाम कैसे, क्योंकि हमें पहले तो जैसे हम देखे राधा राधे का होती है, नाम
ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। इसमें कहा गया है कि क्योंकि हमें दरअसल में भी एक्चुअली भगवान को वैसे भी हमने देखा नहीं, क्योंकि हमारी जो भी इंद्रियां है, खासकर हमारी जो आंखें हैं वो शुद्ध नहीं है। उन आंखों की शुद्धि करने के लिए ये हरिनाम दिया गया। हरिनाम एक मेडिसिन है, एक औषधि है। आप खुद एक डॉक्टर है, केमिस्ट है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो पेशेंट लोग आते हैं उनको मेडिसिन की क्वालिटी क्या है उनको नहीं पता, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है उनको नहीं पता उसके अंदर क्या है, मगर वो आप पे ट्रस्ट करके वो मेडिसिन लेते हैं, और उसके बाद जब वो क्योर हो जाते हैं उनको लगता है हाँ यार ये मेडिसिन सही थी। ठीक है, इसी ब्रह्म संहिता में एक बहुत ही सुंदर जो श्लोक है वो हमारे ब्रह्मा जी बताते, प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचयेना संता सदैश हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंता गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कि जिसकी आंख में प्रेम का अंजन लगा हुआ है वो ही सिर्फ भगवान को देख सकता है। क्योंकि अगर आप भगवान को देख भी रहे हैं ना, वो साक्षात तो है ही है, मगर हमारे पास वो आंखें नहीं है कि भगवान को देखते सारी हमारे शरीर के अंदर कंपन शुरू हो जाए, अष्ट सात्विक का विकार शुरू हो जाए, आंखों से अश्रु हो जाए, हमको ये ना पता लगे कि ये दिन है कि रात है कि क्या है। हम जब आते हैं ज्यादा से ज्यादा हम भगवान को देखते हैं 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, और मैक्सिमम कोई होगा बहुत ही प्यारा भक्त तो वो 5 मिनट तक भगवान को देखेगा, उसके ज्यादा वो भगवान के सामने स्टैंड ही नहीं करता है। मगर श्रीमद् भागवतम में देखिए जो ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, जब उन्होंने भगवान को देखा वो जी युगो युगो बीत गए, युग युग बीत गए। तो जो शुरुआत है वो ऑफकोर्स वो वहां पे साक्षात खड़े हैं, मगर हमारे पास वो आईज नहीं है कि भगवान को देखने के लिए, कि वो भगवान साक्षात वहां पे खड़े हैं। हम सिर्फ भक्तों पे ट्रस्ट करके और ये देखे कि भगवान अपने अर्च विग्रह रूप में खड़े हैं तो हमें उन्हें देखना है, पर एक्चुअल में उनको देखने के बाद हमारी आंखों से अश्रु बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो अभी उस अश्रु को निकालने के लिए ये हरि नाम का जपना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये खुद ही ये जो वार्तालाप है ये हरि नाम चिंतामणि में से मैंने उठाई है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बीच में और हरिदास ठाकुर के बीच में होती है वार्तालाप। तो वहां पे उन्होंने बोला कि सर्वप्रथम हरि नाम, उसके बाद रूप गुण और लीला आएगी। ठीक है, और किसी भक्त का कोई प्रश्न? हाँ जी, यहाँ पे सामने है प्रभु जी, इनको मैं दे दीजिए।
नहीं,
क्योंकि आज की डेट में कोई क्वालिफाइड नहीं है, अभी नहीं है, नहीं है, बता रहा हूँ आपको। इसलिए जो गोस्वामी लोग हैं उन्होंने उनको वहां पे डाला है, क्योंकि हम सब कलयुग के प्रोडक्ट हैं। अगर जो क्वालिफाइड होगा ना वो पब्लिकली आके अपने को अनाउंस नहीं करेगा, हम वेल क्वालिफाइड, मुझे 2 ग्रंथ मुझे पढ़ना है, लोगों को बताना है, क्योंकि ये इतना गुह्यम ज्ञान है ना वो अपने तक ही रखते हैं। है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अभी नहीं होंगे, वो भी है, मगर वो अपनी आइडेंटिटी को लोगों के सामने रिवील नहीं करते हैं। हमारा जो मूवमेंट है हरे कृष्णा मूवमेंट, ये प्रचार का मूवमेंट है, ठीक है ना। पहले लोगों को इस तरह पे उठाना है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको जानवर वृत्ति से उनको पहले इंसान वृत्ति में लाना है। पर जिसके बारे में अभी अभी जो चल रहा है संदर्भ चल रहा है, ये बहुत ही उच्च ज्ञान है। उसके बारे में क्या ज्ञान है कि आपके आंसू अश्रु गिर रहे हैं भगवान की लीला को देख के, ये सब देख के। अगर गोस्वामी ने कुछ फैसला किया है जो हमारे छठ गोस्वामी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है ना, क्योंकि ये घूमे जो प्रभुपाद जी अंग जो शिष्य है उन्होंने इन पे तात्पर्य क्यों नहीं दिया, उन पे इतने बारे में क्यों नहीं होती चर्चा, इसलिए होती है चर्चा कि इसको मिसयूज हो जाएगा। अब देखिए लोग सहज बन जाएंगे, बिना मन में जाके देखिए ना कितने सारे लोग हैं, लोगों को यही नहीं पता कि गोपी भाव है क्या, कि गोपियां किस कदर भगवान के लिए अपना सब कुछ निछावर करके भगवान की सेवा करती हैं, दूसरे लोगों को लेकर भगवान के पास आती हैं, इसे कहते हैं गोपी भाव। पर लोगों का मानना क्या है, गोपी भाव आदमी है, शेव कराओ, लिपस्टिक लगाओ, गहना पहनो, साड़ी पहनो, घाघरा पहनो, घूमो, इसे कहते हैं गोपी भाव, समझे। गोपी भाव नहीं है, उसे पागलपन कहते हैं, उसे कहते हैं बेवकूफी, उसे कहते हैं समाज के अंदर गंदगी फैलाना। अरे भैया भगवान ने आदमी का स्वरूप दिया तो आदमी की तरह एक्ट करो ना यार, समझ रहे। उसे गोपी भाव नहीं कहते ड्रेसिंग चेंज करना, साड़ी पहना, ब्लाउज पहना, वो नहीं है गोपी भाव। गोपियों का भाव है कि हर समय भगवान का चिंतन करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति भगवान के प्रति लोगों को जोड़ना, इसे बोला जाता है गोपी भाव। कि शुद्ध जब वो भगवान का चिंतन करते थे उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, वो कहां पर है, उसे बोला जाता है, समझे। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।